के गिरह में करोड़ों वर्ष जैसे प्रतीत हो गए। हम लोगों का भी तनिक भी प्रेम इसलिए इतना होता भी नहीं। सामान्य एक श्रद्धा भी है तो वो श्रद्धा भी अभी निष्ठा तक पकी हुई है इसलिए अनुभूति नहीं होती। यहाँ अभवत अतीत काल का निर्देश का कारण ये है या प्रसंग मैत्रेय मुनि के निकट कथन काल अपेक्षा अतीत। अतीत काल का इसका प्रयोग अभवत ये इसलिए किया गया शायद लंग या क्या पता लंग कहते हैं कि इस प्रसंग को मैत्र ऋषि ने उनको
विदुर जी को
पहले बतला दिया है। इस यहाँ पर गोपी भी शब्द का तात्पर्य बतला रहे हैं। गा माने इंद्रिय समूह, गा माने इंद्रिय समूह, उसके बाद में गा से हो गया गो और इसके बाद में पौ से पी, तो पा माने पांति, विषय की रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, इंद्रियों का पालन पोषण करती है, कृष्ण के इंद्रियों का पालन पोषण करती है अपने प्रेम के द्वारा, प्रेम पिलाकर से कृष्ण को के इंद्रियों को और उनको पालन पोषण करती है इसलिए वो गोपयंती संरक्षत इति संरक्षन्ति इति गोप्यः गोपयंती मैंने रक्षा करती है किनकी कृष्ण की। कैसे रक्षा करती है प्रेम रूपी महाभाव रूपी निधि के द्वारा उनकी सब समय रक्षा पालन पोषण करती है। इसलिए गोपियों की मैंने रक्षण की थी। कृष्ण जो शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व ब्रह्मांड को धारावाहिक भाव से उल्लास और उत्सव उल्लसित करते हैं उत्सित होते हैं कहां से उस सहायता उज्ज्वल प्रेम विशेष विकार विस्तार और प्रचारित करते उनको कहते हैं जिन गोपियों की सहायता से कृष्णचंद्र भगवान होने पर भी अखिल विश्व ब्रह्मांड में धारावाहिक भाव से जगत को उल्लसित करते हैं और उच्छ्वसित करते हैं। उच्छ्वसित मैंने जैसे समुद्र है ना उसे उछाल देते हैं उसके पानी उसको कहते हैं उच्छ्वसित। ज्वार जिसको कहते हैं हृदय में आनंद के उच्छ्वास उच्छ्वसित एकदम स्थित कर देते हैं। जिनकी सहायता से उज्ज्वल प्रेम विशेष का वितरण विश्व ब्रह्मांड में करते हैं योग्य जीवों में प्रेम का विस्तार करते हैं। गोपयति संरक्षति जिसकी सहायता से उसको कहते हैं गोपी। अथवा उस निज लादनी शक्ति स्वरूपा जो गोपियां जो उनकी परमानंद संदोहामयी शक्तिमत्ता रक्षा करती हैं। जो गोपियां कृष्ण की इस लादनी शक्ति के स्वरूप होकर के कृष्ण के आनंद के बढ़ाती हैं उत्सित करती हैं इसलिए ये गोपियां बहुत तरह का लिया करते हैं और स्थापन करते हैं करती हैं और वितरण करती हैं। इन शक्तियों के माध्यम से ही कृष्ण जगत में प्रेम देते हैं अनुभव करते हैं और दूसरों को वितरण करते हैं ये है गोपी। अतः एतादृश ऐसी निज मोहन तक भाव द्वारा ही उसी के द्वारा ही ऐसी क्रीड़ा संपन्न हुआ करती है। उन गोपियों के माध्यम से ही ऐसी क्रीड़ा होती है नहीं तो कृष्ण न अनुभव कर सकेंगे न जगत को दे सकते हैं अब न तो कुछ कर सकते। उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान, इसलिए ये गोपी कृष्ण को भी संरक्षित रखती है। अब यहां पर एतादृश गृह दुख अधिकाधिक विस्तार हो गया। इन्हीं गोपियों के द्वारा कृष्ण की क्रीड़ा संपन्न होती है और ये विरह दुख जो है, वियोग का जो दुख है, ये भी एक प्रेम रस है। इसका भी विस्तार जिन गोपियों के द्वारा होता है वो गोपियां। गोपियां यदि गोपियां वियोग की मूर्ति, पहले कहा यदि गोपियां नहीं होती तो इस वियोग रस का प्रचार ही नहीं होता, ना कोई समझता ये क्या है। इसको समझाने के लिए गोपियां ही, इसकी भी संरक्षण का ये गोपियां ही करती हैं। ऐसे विरह दुख को विस्तार के लिए ही भगवान क्रीड़ा किया करते हैं। लोगों में पहले प्रेम लगा देंगे, प्रेम उत्पन्न कराएंगे, अब फिर प्रेम बढ़ाकर छिप जाएंगे और वियोग करा देंगे। अब वियोग करा करके फिर उसी को टेस्ट करते हैं, उसी का आस्वादन करते हैं और विश्व में इसका प्रचार करते हैं। जिन गोपियों के द्वारा उनको पाते हैं वो। इसलिए मधुसूदन पद्मिनी गण के सम्मुख लंपट लीला ही भ्रमर के समान होकर के प्रियजनों के मधु सुख कारण सर्वस्व। मधुसूदन का दो अर्थ बल्कि बहुत से अर्थ हैं, एक ही दो। मधु माने संसार के प्रति जो आसक्ति है, इसको काटने के कारण जो भगवान अंतर्जामी होकर के समझ करके संसार से विषयों से हमारे चित्त को आसक्ति को काट देते हैं, ऐसे जो प्रभु जो दयालु हैं उनको कहते हैं मधुसूदन। मधुसूदन माने मधु का आहरण करने वाला मधुमक्खी। इसलिए इसको भी भ्रमर को भी मधुसूदन कहा जाता है। फूलों में से एक एक फूल से मधु आहरण करता है, सुगंध माने आहरण करता है, आस्वादन करता है, इसलिए इसको भी मधुसूदन कहा। किंतु मुक्तिवादियों के लिए संसार की आसक्ति को काटने वाले भगवान का नाम मधुसूदन है। मधु को मारा था इसलिए मधुसूदन, और भक्तों के मधु का जो आस्वादन करने वाले हैं उनको कहते हैं मधुसूदन। विशेष करके ब्रजरस रसी जो कृष्ण गोपियों के प्रेम रूपी ममत्व रूपी प्रेम को आस्वादन करते हैं उनका नाम है। पद्मिनी कौन है? गोपी पद्मिनी। और स्वयं भ्रमर बनकर प्रियजनों के मधु, प्रियजन माने गोपियों के मधु, उनके प्रेम के मधु को आस्वादन करते हैं। माने कैसे? जैसे वात्सल्य रस का करना है तो नंद जसोदा रूपी पद्म और पद्मिनी का गोपियों के लिए, गोपियां मधु पद्म
पद्मिनी
और उनके प्रेम को अपने प्रति इसका आस्वादन करते हैं, इसलिए वो मधुसूदन। इस श्लोक में मधुसूदन सहलाया है। दूसरे श्लोक से वो पराशर ऋषि वाला श्लोक किया है। तथा सह गोपी भी राम मधुसूदन, इसमें आया इसका। सूदन नाश करके और आस्वादन, हे सखे हमारा स्वभाव ही ऐसा है, संसार रूपी मधु को आसक्ति को काट कर और प्रेम रूपी मधु को मैं दिया करता हूं। इसलिए बहुत प्रकार की चातुर्य के साथ में माधुर्यमृत वर्षण कर लोक सकल के चित्त को आकर्षण कर उनमें रमण करता हूं। क्या कथा, बड़ी विचित्रता के साथ में, चातुर्य के साथ में माधुर्यमृत मेघ बनकर क्या फिर प्रेम की वर्षा करता हूं। कृष्ण ब्रज में चार प्रकार के रसों की वर्षा करते हैं, वसन करके लोग सबके चित्त को आकर्षण किया करके उनमें रमण किया करता, सुख प्राप्त करता और उनको भी सुखी बनाता। परंतु हमारी माधुर्यमय क्रीड़ा पश्चात्य परम अधिक स्वरूपे पर्यवसित हुआ था, किंतु सबसे अधिक माधुर्य जी की मूर्ति ये गोपियां हैं, इसी रस में ही सबसे अधिक अभिप्राय यह है कि हमारी परम रमणीय और सर्व चूड़ामणि लीला रास या गोपियों के साथ, यदि कोई कहारु पक्षे परम आदि स्वरूपे पर भी यदि यही उसे उन लीलाओं को सुन करके किसी में आदि माने व्याधि रोग, यही रोग को कैसे मिले, यह रोग यदि किसी प्रकार से हो जाए तब इसमें किसका दोष, ये उत्प्रेक्षा के द्वारा करें या दोष मेरा ही दूसरे का दोष। यदि कृष्ण में ऐसा किसी को लोभ उत्पन्न हो जाता है और संसार से परम विरक्त हो जाता है और कृष्ण में ही चित्त एकदम रम जाता है तो ये दोष किसका है, पता है ये दोष मेरा है, मैं जानबूझ करके ऐसा करता हूं। इसलिए मदात्मिका भी हमने पहले बतलाया है गोपियों के लिए, गोपियां मदात्मिका हैं। पद की व्याख्या में इसके द्वारा सनातन गोस्वामी एक विचार और ला रहे हैं, नया विचार। वह विचार यह कि गोपियों में जो विरह दुख होता है वो हमें दुख नहीं, क्योंकि तुम्हें जानबूझ करके ऐसा करता हूं। जगत में देवात्मक प्रेम के प्रचार करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, नहीं तो जगत में प्रचार होता ना कोई जानता, इसलिए अपने प्रति और जीवों को ऐसा करने के लिए उनमें यह भाव देकर के उनके द्वारा यह कराता हूं। उनका सुख तो मुझमें आ जाता है, किंतु तो उनका दुख विरह में जो होता है वो बल्कि एक तरह से मेरे लिए आनंददायक होता है जगत के जीवों को सुख करने के लिए। इसलिए वो तो वियोग का दुख लाभ करती है, किंतु मदात्मा होने से भी वो हमें आना चाहिए था, किंतु आता नहीं। मैं जानबूझ करके करता हूँ, यदि किसी को किसी कारण से किसी का कल्याण करने के लिए हम किसी को दुख जैसा देते हैं किंतु सचमुच में दुख न हो तो उसे मुझे आनंद होगा। यदि मैं ऐसा कोई कथा कहूँ जो सब लोग बड़े प्रेम से रोने लग जाए, जब रोने लगेंगे हो सकता है कि हमें भी दो एक आंसू आए, किंतु कितना आनंद होगा, ये सब लोग कृष्ण के प्रेम के मारे रो रहे हैं, आनंद होगा। कृष्ण इसी चीज को कहा, ये गोपियां उधर मर रही हैं प्रेम के विरह में, वो दुख का जो विरह है हमको नहीं आता, क्यों, इसे जगत का कल्याण में करता है विश्व ब्रह्मांड और उनके हृदय में रमण करता हूं इसी द्वारा। इसलिए तादृश मन पीड़ा हमारा नहीं। इस रूप से परवर्ती श्लोक दोनों के अर्थ संगति का, इस प्रकार से उन सब का अर्थों की संगति विभिन्न रूप से जो मैंने किया है ऐसे ही करना होगा। मैं सर्वलोक शिरोमणि, मैं मुझसे तारा अधिकतर कठिन न वो अकृतज्ञाति रहिता जानते ही पूर्वी तात्विक भाव वक्तव्य मुझसे भी अधिक अधिकतर काठिन्य और अकृतज्ञता आदि अकृतज्ञत्वादि रहिता, मैं उनसे बहुत कठिन हूं ये भाव, उनमें न तो काठिन्य है और न ऐसा विवेक है जैसा मैं विचार कर रहा हूं,
उनमें नहीं है, हम तो विचार कर रहे हैं, जगत का कल्याण कर रहे हैं उनमें, इसी के द्वारा जगत में शिक्षा दे रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं, इसलिए उनको तो आनंद हो, इसलिए उनमें ये काठिन्य और अकृतज्ञत्वादि का दोष नहीं है, हम में ये सब बल्कि है। मैं इनको इतना रुला करके भी मैं उनका कुछ करता नहीं बल्कि रुलाता हूं, तो इसलिए मैं कृतज्ञ हो अकृतज्ञ हो, किंतु वो नहीं। कहते हैं यहाँ सनातन गोस्वामी विचार में, कृष्ण गोपियों के हृदय की अंतर की समस्त भावनाओं को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और ब्रज आगमन उनका अभिष्ट है, माने ब्रज में लौटना उनके लिए अभिष्ट, माने चाहते हैं, तथापि क्यों कपटता करते हैं और नहीं आते हैं वही जाने, क्यों नहीं आते वही जाने, चाहते हैं आना, बार बार कहते हैं, रोते हैं भी, तो फिर भी नहीं आते। उद्धव जी संदेश वहन करके गए और वहां पर कुछ गोपियों को संतना देने के लिए प्रयास किए। भागवत में तो ऊपर से लिखा है कि वो बड़ी प्रसन्न हो गई अंत में, किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो भी टीका किया उसमें दिखलाया है उनका विरह और भगिनी चरणी बढ़ता था, वो कभी भी शांत नहीं हुआ, महावेग से वर्धित हो गया। इसी श्लोक में पूज्यपाद श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, इसी ठाकुर इसी रामेन साधु अत्र दद्रशु भी, यहां नद्रदृशु अतीत काल निर्देश हेतु यहाँ देखें नहीं, किंतु दंत वक्त व्रत के बाद में हमारे सही संयुक्त होकर के रहते हैं पीछे ये प्रकाश में। कहते हैं कि यहाँ पर तो नहीं देखा गया कृष्ण लौट के, किंतु दंत वक्त के वध के बाद में कृष्ण वृंदावन में आते और सब गोपियों को लेकर और तब नित्य धाम में पहुंचते हैं गोलोक वृंदावन में, और एक स्वरूप से द्वारका चले जाते हैं और वहां जाकर के यदुवंशियों का परस्पर लड़ाई युद्ध करा करके दिखलाने का दृश्य उपस्थित करके, किंतु लड़ाई नहीं होती और उनका भी पराक्रम तरफ से योग माया के प्रभाव से सबको अपने अपने लोकों में भेज देते हैं और एक स्वरूप से वो रह जाते हैं वहां द्वारका में, उसको छोड़ करके कभी नहीं जाते, जैसे मथुरा छोड़ करके नहीं जाते, वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, द्वारका में भी उनकी वो लीलाएं नित्य होती है, किंतु आदमी से बतला रहे हैं कि दंत वध के बाद कृष्ण दंत वध को बाद में दतिहा यहाँ पर पास में स्थान है और ये होली गेट उस समय में कृष्ण को के लिए सजाया गया था। दंत वध के बाद में कृष्ण जब मथुरापुरी में प्रवेश कर उसमें मथुरापुरी नहीं थी, सब चली गई थी कहाँ, द्वारका में तो वन जंगल जैसा था, परित्यक्त भूमि तो थी, इसलिए यहीं पर विराट बंधन वाल इत्यादि बनाया गया और इसी में से प्रवेश करके इसी के माध्यम से जमुना को पार करके चले गए गोकुल में।
तो कोई था ही नहीं तो किसने किया सब?
हैं?
जब कोई था ही नहीं
वहां से ना नंदगांव गोकुल से सब लोग आए, उन्होंने सुना जब कृष्ण आ रहे हैं तो वहां से लिया, मथुरा वाले सब जितने थे सब लोग चले गए थे द्वारका, अपने उनके लिए घर बना दिया था सब लोगों को, इसलिए यहाँ पर मथुरा का वासी कोई नहीं, बस गोकुल में वो सब जो गोप थे वो थे, उन्होंने सुना वो ले गए कृष्ण। कृष्ण गदा के द्वारा वहां पर उसका वध किया। तदनंतर कृष्ण मथुरा में प्रवेश करके और वहां से जमुना को पार करके नंद ब्रज में आ गए, यहां पर नंद। जब जमुना को पार किया होगा तो कहां गए, वहां पर नंदगांव जाने के लिए जमुना नहीं पार करना पड़ेगा, किंतु गोकुल जाने के। इसलिए मालूम होता है कि जिस समय ये थे नंदगांव को भी विरह के कारण छोड़ करके आ गए थे। सर्वान संत अपयामास कालिंद पुण्य रामो रमो पुण्य वृक्ष समार्चिते गोपनारी भी अनिशम क्रीड़ियामास केशव रमने के लिए सुखेन एव गोप वेश धर प्रभु बहु प्रेम रसेन अत्र मास द्वय द्वयम वासहि। अर्थात समस्त ब्रजवासियों को संतर्पित किया, सुख दिया, वहां आए और पुण्य वृक्ष समन्वित कालिंदी के अरण्य पुलिन में, गोकुल में तो जमुना जी भी हैं, गोपियों के सहित केशव और गोपों के सहित दिन रात क्रीड़ा किए और गोप वेशधारी प्रभु रम्य के विषमूह बहु प्रेम रस तथा मास द्वय वास्तु दो महीने रहे। दो महीने कहने से दो मास बाद ही समस्त जितने परिकर थे उनके गोप गोपी नंद बाबा और सब सबको अपने साथ लिया और लेकर के अप्रकट लीला में अर्थात गोलोक में यहां से चले। गोलोक अथवा लीला अप्रकट हो गई, लीला चलती रही किंतु अप्रकट अप्रकट लीला हो गई। अब इस जगत के लोग उस लीला को देख नहीं सके, जोग माया का संबंध कटअप कर दिया। तास्ता छपा प्रेष्ट तमेन नीता मैव वृंदावन गोचरेण खनार्धवत्ता पुनरंगताशाम हीना मया कल्प समाबहुव। हे उद्धव जी को कृष्ण समझा रहे हैं, वे गोपियां वृंदावन में गोचारण के समय हमारे सहित मिलकर उन उन रात्रों को जिसमें मैंने उनके साथ में क्रीड़ा की, एक क्षण अर्थ एक क्षण का आधा भी वो कैसा मालूम पड़ा, वो इतनी बड़ी रात ब्रह्मा की रात और क्षण अर्ध में वो बीत गई। और मालूम नहीं पड़ा, जैसे एक आदमी सुसुप्ति अवस्था में सो जाए, 9 बजे सोए और 5-6 बजे जगे, पर बड़े सुख से मैंने शयन किया सोया, क्या सुख मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे ही वो रात जितनी बड़ी भारी लंबी ब्रह्मा की रात्रि कोटि कोटि बरस वाली और मालूम ही नहीं पड़ी ये कब ये बीत गई। राय रामानंद महाप्रभु जी के साथ में वो गोदावरी के तट पर बात कर रहे हैं और दो बात करने में ही वो पूरी रात बीत गई, तो जी हम लोगों ने कुछ बात ही नहीं किया और वो बात करते करते चली गई। इसलिए जहां पर जिसमें रुचि होती है, प्रीति होती है, उसमें क्षण मात्र में वो सुख का दिन बीत जाता है और दुख का दिन कभी नहीं बीतता। एक आदमी रोगी है, बुखार या खूब रोग हो गया, रात में जहां 9-8 बजे और घड़ी देख लेगा, रात भर घड़ी देखता है, रात ही नहीं बीती, पहाड़ हो जाती है। गोपियों की ऐसी रातें होती थी कब वियोग में हुई, जबकि कृष्ण मथुरा द्वारका चले। और हमारे वीरा में वो सब रातें कल्प सदृश दीर्घ बोध होने लगे, एक एक कल्प के समान में होने लगे। ये गोपियों की स्थिति महाभाव की है। जितना ही प्रेम या श्रद्धा बढ़कर के निष्ठा होगी, निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, उससे भाव, उस भाव से प्रेम, प्रेम से बढ़कर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होता है। ये प्रति की अनुभूति और वियोग की उतना ही अधिक बढ़ेगी। कृष्ण को अर्जुन भी देखते हैं, अर्जुन को वियोग होता है कृष्ण के लिए। जैसे कृष्ण जब चले गए ना धरा धाम को छोड़कर, तो अर्जुन लौट आए यहाँ इंद्रप्रस्थ में, कि हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में, क्योंकि वो राज्य तो अब ले लिया था। युधिष्ठिर महाराज जी से मिले, मिलने के बाद में उनकी कैसी दशा हो गई, जैसे कोई मणियारा सर्प हो और उसकी मणि निकाल ली गई हो और वो पागल हो जाता है जैसे उसको खोजने के लिए, ऐसे ही उनकी दशा हो गई। और तब कृष्ण का एक एक चरित्र गान करते हुए, और कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है उनकी दशा, उस समय वो वर्णन करते हैं कृष्ण की लीला माधुरी का। अब वो कृष्ण चले गए हमें, हम असहाय हो गए, हमारा गांडीव धनुष जिसे पृथ्वी कांपता था, वो गांडीव धनुष हमसे उठा ही नहीं, और हमारे देखते 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 उन गोपियों को लूट ले गए गोपसा। और क्या करते, एकदम वियोग तो है किंतु गोपियों जैसा वियोग नहीं। अर्जुन ने अपने को संभाल लिया, वो अपने को संभाल ही नहीं सकते। तो ये करें महाभाव की स्थिति का ये खना भगवत्ता पुनरंग ताशन हीना मया कल्प समूह बबू। जब मैं मेरा वियोग होता है तो एक एक क्षण एक एक कल्प के समान, और जब मिलन होता है तो एक एक कल्प भी एक एक क्षण हो जाता है। वो शिक्षाष्टक का चक्षुषा प्रभ्रशायितुं सुन्नाइव जगत सर्वं गोविन्द। हम लोग केवल सुन लेते हैं, न कोई अनुभूति, न कोई विकार, न कोई कुछ, न दुख, न कुछ होता, किंतु वो लोग अनुभव करते। अब पुनराय सनातन गोस्वामी जी एक श्लोक में दोनों का वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम की महिमा, गोपियां प्रेम की मूर्ति है। तो देखो जब मिलन में इनकी क्या दशा होती है और विरह में इनकी क्या दशा, आकर दोनों को दिखला है। पहले कल्प खनत्व और फिर खन खन कल्पत्व, खन का कल्पत्व, ये दोनों दिखाए। हे अंग हे प्रिय, हमारे श्री अंगों के समान अत्यंत प्रिय। जैसे अपना अंग किसी को प्यारा होता है ना, यदि अपने शरीर शरीर के किसी भी भाग में अंगुलीय में कहीं भी कोई कष्ट हो ना, तो वो कष्ट से भर जाता है। और कहीं अपने ही सौंदर्य को देखेगा अपने अंगों को, तो उसी में प्रसन्न हो जाता है। तो उद्धव जी को अंग कह रहे हैं, तुम हमारे जैसे अंग हमारे प्रिय हैं, ऐसे तुम हमारे अत्यंत प्रिय हो। क्यों क्यों होता है? क्योंकि इनका उद्धव जी का प्रत्येक, उनकी जितनी भी प्रत्येक क्रियाएं हैं, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होगी ना। आदमी क्या चाहता है, हम लोग भी क्या चाहते हैं, हमारा प्रिय कौन होता है? जो हमारे मन के अनुसार में चल करके हमारे सुख के लिए कार्य करता है वो हमारा सबसे अधिक प्रिय होता है, और जो हमारे मन के विपरीत कार्य करता है वो हमारा शत्रु बन जाता है। संसार में जितने लोग हैं भक्त लोग, उन सब लोगों में गोपियां इस तरह से कृष्ण के प्रीति के लिए सब कुछ करती हैं। उद्धव करते तो हैं, उनके लिए भी अंग कह रहे हैं, किंतु उनसे भी अधिक वो गोपी। तो उद्धव जी को इसीलिए कह रहे हैं, उद्धव जी कोई भी कार्य करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को वो छोड़ना नहीं चाहते। मथुरा से जबकि छोड़ करके आ रहे हैं, मैं जीऊंगा कैसे आपके बिना? आपके बिना जीऊंगा माने अपने सुख के लिए जीऊंगा, कृष्ण को सुखी करने के लिए उनके पास, माने मुक्ति के बाद में, स्वरूप सिद्धि के बाद में ऐसी ही स्थिति लोगों की हो जाती है, भक्तों की स्थिति हो जाती है। सब समय कृष्ण के सुख के लिए ही वो कार्य करता है, क्योंकि उत्तम भक्ति हो जाती है ना, उत्तम भक्ति का लक्षण यही है, अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलन, तन मन वचन इत्यादि के द्वारा, भावों के द्वारा। उद्धव जी का सब समय ऐसा ही कार्य होता था जो कृष्ण जी प्रसन्न होते। हम लोग अभी साधक हैं, ऐसी अभी चेष्टा तो करते हैं, किंतु अपनी अपना सुख कुछ